मेरे आत्मीय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज बुधवार है, वेडनेसडे, और वेडनेसडे डे के लिए आप सब ने मुझे इस बात की अनुमति प्रदान की है कि इस दिन हम सब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के विषय पर बात करें, इस मुद्दे पर बात करें कि तैयारी की कैसे जानी चाहिए। तो डेफिनेटली आज मैं सीधे सीधे इसी विषय पर आता हूँ। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जब मैंने इस विषय पर बात की थी तो आपके सामने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो तीन सबसे बड़ी चुनौतियां हैं उसके बारे में बताया था, क्या आपको याद है? सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको याद है कि वो तीन सबसे बड़ी चुनौतियां मैंने कौन कौन सी बताई थी। और यदि आपको याद नहीं है तो दोस्तों अब ये बताइए कि आज मैं जो बताने जा रहा हूं उसका लाभ आप कैसे उठाएंगे, कैसे आप लाभ उठाएंगे? क्योंकि आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि ये जो चुनौतियां हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की, तो उसका समाधान क्या है, उसका इलाज क्या हो सकता है। तो आपको मालूम तो होना चाहिए कि बीमारी क्या है। खैर, आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आएगा। और यदि याद नहीं आता है तो आप उस दिन के डेली ऑडियो लेक्चर को ढूंढिए और वहां से सुन करके पकड़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, नहीं तो किसी दोस्त से बात कीजिए। यहां मैं आपकी मदद करने नहीं जा रहा हूं और इसके लिए सच पूछे तो मैं क्षमा भी चाहूंगा। तो दोस्तों, वो जो तीन सबसे बड़ी चुनौतियां मैंने आपको बताई थी, उन तीनों सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं उनका समाधान केवल एक ही है। आप इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि कभी आप जो बड़े बड़े होटल हैं उसमें जाइए, राइट? आपका कमरा है, आपके कमरे की चाबी आपके पास है, बगल के कमरे की चाबी बगल वाले के पास है, तो जितने भी कमरे, मान लीजिए कि उस होटल में 400 कमरे हैं, तो 400 कमरों की चाबियां 400 लोगों के अलग अलग हाथ में हैं, और सब केवल उन चाबियों से अपने अपने कमरों को ही खोल सकते हैं, दूसरे कमरे नहीं खोलते उससे। लेकिन ये जो होटल वाला है इसके पास एक मास्टर चाबी होती है, उसे कहते हैं मास्टर चाबी। ये चाबी एक ही होती है और इसकी विशेषता ये होती है कि यह अपने इस मास्टर चाबी से 400 के 400 कमरे खोल सकता है। इसको 400 अलग अलग चाबियों की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों, ये जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की मैंने जो तीन चुनौतियां आपके सामने रखी, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि यह बात आए कि इन तीन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए आपके पास कम से कम तीन हथियार तो होने ही चाहिए। लेकिन मैं यहां आपको सिर्फ एक हथियार बताने जा रहा हूं जिसे मास्टर की आप कह सकते हैं, और वह मास्टर की है दोस्तों पढ़ने का ढंग। दैट्स ऑल, पढ़ने का ढंग। कि आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की जो पढ़ाई करनी है वो करनी कैसे है, बस केवल ये। अगर जिस दिन आपको यह बात मालूम हो गई उसी दिन आप बाकायदे दावे के साथ अपने मन में यह कह सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यह मैं अपने अनुभव से भी कह रहा हूं, दूसरों से इसके बारे में जो बातें हुई हैं उनके अनुभव से भी कह रहा हूं, और इसके बारे में मुझे कोई डाउट भी नहीं है। और डाउट इसलिए नहीं है कि मेरा अपना अनुभव तो 1980 के आसपास का है और उसके बाद तो गंगा नदी से बहुत पानी बह चुका है। आप कह सकते हैं कि सर आप तो इतने पुराने हो गए। डेफिनेटली मैं पुराना हो गया हूं, लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न दोस्तों वही है। और मेरे साथ सबसे अच्छी बात है कि मैं हर साल अपने को नया करता चला हूं। भले ही मैं सर्विस में आ गया था लेकिन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पर मेरी निगाह रहती थी, मैं लगातार स्टूडेंट्स को गाइड करता रहता था। मैं बाकायदे जब भी कहीं टूर पर जाता था तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं वहां के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाऊं या मैं कॉलेज में जाऊं, मैं यहां तक कि स्कूलों तक में गया हूं और मैंने बातें की हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए इसके ऊपर। तो इसीलिए मेरी बातों को आप आउट ऑफ डेटेड मत मानिएगा। एकमात्र चाबी है पढ़ने का ढंग, कि आपको पढ़ना कैसे चाहिए। चलिए, मेरी बात की तस्दीक करने के लिए आप एक काम करें, और प्लीज करें इसको। आप किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें। आप पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक उठा लें, आप जैव विविधता का उठा लें, आप इकोनॉमिक्स का उठा लें, जिस भी सब्जेक्ट को आप चाहें उसका उठा लें, राइट? उस टॉपिक को आप तैयार कर लें। और अब फिर आप दो काम करें, किसी भी साल का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर उठा लें, प्री का भी और मेंस का भी, किसी भी साल के उठा लीजिए। और उसमें देखिए कि जिस टॉपिक की आपने तैयारी की है उस टॉपिक पर प्री में क्या प्रश्न पूछा गया है, और अगर नहीं पूछा गया हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरे साल का उठा लीजिए, तीसरे साल का उठा लीजिए, देखिए कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया है प्री एग्जामिनेशन में, और उसे हल करने की कोशिश कीजिए कि आप उसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तेजी के साथ, क्योंकि आपको परीक्षा हॉल में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.25 मिनट का समय मिलता है, बस इतनी देर में आपको सॉल्व करना है। और अगर आप उसी को सॉल्व करने में 5 मिनट लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपका दिमाग परीक्षा के लिए तैयार नहीं है। और परीक्षा के लिए तैयार क्यों नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपने इससे संबंधित टॉपिक को अभी अच्छे तरीके से समझा नहीं है, या समझ भी लिया है तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें अभ्यास नहीं हुआ है। तो आप प्री के बारे में भी ये करें, और इसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हों उस साल के क्वेश्चन को देखिए, और केवल देखिए ही नहीं, दो बातें अपने दिमाग में लाइए, अपने दिमाग से दो प्रश्न कीजिए। पहला प्रश्न कि क्या मुझे यह प्रश्न जो पूछा गया है अच्छे तरीके से समझ में आ गया, या कि मेरे दिमाग में कुछ धुंधलापन है, कुछ द्वंद है, कुछ डाउट है, क्या लग रहा है, और माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो इस दौर से आपको गुजरना पड़ेगा, भले ही आप इसे यातना का दौर ही क्यों ना कह लें। हालांकि ये सब बातें हो सकता है कि आपको थोड़ी सी बेकार सी लग रही हो कि अरे ऐसा क्या होता है, पढ़ लो और याद कर लो और रट लो, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मैं बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सफल नहीं हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न कि क्या मैं इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, और फिर इस दूसरा प्रश्न कि अब मुझे इसका उत्तर लिखना है। और ट्राई कीजिए लिखने का, क्योंकि इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है और ये टॉपिक ताजा ताजा आपके दिमाग में है, तो आप देखिए कि जब भी किसी टॉपिक को आप ताजा ताजा पढ़ रहे हैं और इसके बाद उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर रहे हैं तो आपके साथ क्या घटना घटित हो रही है, पॉजिटिव, निगेटिव, बीच बीच की, या जो कुछ भी हो रही है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप प्री के क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मेंस में भी नहीं सूझ रहा है कि इसके जवाब में क्या लिखें, तो यह इस बात का प्रमाण है कि चाहे आपने उस टॉपिक को तैयार करने में 20 घंटे लगाए हों, लेकिन इनफेक्ट हुआ कुछ भी नहीं है, आपने कुछ नहीं, केवल रेगिस्तान में गुलाब की खेती करने की कोशिश की है, गुलाब खिलेंगे नहीं। और यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितने घंटे लगाए हैं, यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, यूपीएससी को इससे मतलब नहीं है कि आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, यूपीएससी को इस बात पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है कि आप चूंकि समाज का कर्ज उतारना चाह रहे हैं इसलिए आईएएस बनना चाह रहे हैं। मेरे पास मेल आते हैं कि सर मैं समाज का कर्ज उतारना चाह रहा हूं इसलिए आईएएस बनना चाह रहा हूं, प्लीज हेल्प मी। यूपीएससी को इससे मतलब नहीं, यूपीएससी को तो सिर्फ इस बात से मतलब है कि आप इस बात को प्रूव कर दीजिए कि आपका जो दिमाग है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक है, हम आपको बना देंगे, बस उसका सिर्फ इस बात से संबंध है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से करनी चाहिए। अगर आप सीधे सीधे बिना समझे ही पढ़ते चले जाएंगे तो उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं और सच पूछे तो उन मेल्स को पढ़ करके मुझे अफसोस होता है। क्या पूछते हैं कि सर एनसीईआरटी की मैंने 3 रीडिंग पूरी कर ली है तो क्या इतना सफिशियंट है, ये बताइए कि ये कोई प्रश्न है, 3 रीडिंग, 13 रीडिंग, 30 रीडिंग, इसका क्या मतलब है। सवाल तो यह है कि आपने जो रीडिंग की है उसे आपने समझा है या नहीं समझा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, अदरवाइज कोई अर्थ नहीं है उसका, चाहे आप 130 रीडिंग कर लें, बेकार है। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप करके देख लीजिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, मेंस का ही उठाइए, ठीक है, आप किसी भी जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन उठा रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके पास नोट्स हों, किताबें हों, अपने टेबल पर रख लीजिए और उसका आंसर लिखने की कोशिश कीजिए। जी हां, बिल्कुल ओपन बुक एग्जामिनेशन, आप बिल्कुल फ्री हैं कंसल्ट करने के लिए, किताब कंसल्ट कीजिए और उसका आंसर लिखिए, यह भी आपको करना चाहिए, तभी आप मेरी बात पर थोड़ा सा भरोसा कर पाएंगे। और जब तक मेरी बात पर भरोसा नहीं करेंगे आपके जो पढ़ने का ढंग है वो बदलेगा नहीं, क्योंकि जो पुराना ढंग है वो दिमाग में इतनी बुरी तरह से जड़ जमा करके बैठा हुआ है कि उसे अपरूट करना, उसे उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। आप ऐसा करके देख लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आप एक ही क्वेश्चन कर लीजिए ना, आपको पता लग जाएगा कि यार बताओ किताबें मेरे पास हैं, किताब कंसल्ट करने की मुझे छूट दे दी गई है, इसके बाद भी अगर मैं आंसर नहीं लिख पा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि रट करके तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा फिर, क्योंकि वहां तो इसकी जरूरत ही नहीं है। जब मैं किताब देख करके आंसर नहीं लिख पा रहा हूं तो फर्क क्या है, वो किताब मेरे दिमाग के अंदर है लेकिन आंसर तो नहीं लिख पा रहा हूं ना, और यूपीएससी को सिर्फ आपके आंसर से मतलब है। दोस्तों जब तक आप इसे रियलाइज नहीं करेंगे तब तक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी का ढंग आप नहीं बदल सकते, बदल ही नहीं सकते, और बदलना जरूरी है। और जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि सिविल सर्वेंट बनना दूर की कौड़ी की बात होगी। मैं अब ये तो दावा नहीं करूंगा कि बन ही नहीं सकते, मुझे थोड़ी सी विनम्रता का यहां इस्तेमाल करना चाहिए, अपने लिए थोड़ा सा बचाव रखना चाहिए बचा करके, लेकिन सामान्यतया बहुत कठिन होगा, नहीं के बराबर। और इसीलिए मैंने कहा कि बेहतर होगा कि आप एक छोटा सा यह प्रयोग कर लें। दोस्तों हम लोग इस विषय पर बहुत बातें करेंगे क्योंकि यही तो कोर एरिया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का। और सच पूछे तो मुझे इस बात की बेहद आत्मसंतुष्टि है कि AFAIS कम से कम आपको जो लेक्चर प्रोवाइड करती है वो इसी पैटर्न पर करती है जिसकी आप सबको जरूरत है। इसीलिए AFAIS के जो ऑनलाइन का जो कोर्स है उसमें हमारा जो नारा है वो है, हम केवल पढ़ाते नहीं हैं समझाते हैं, और समझाना ही सही मायने में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की मदद करना होता है, ऐसा मुझे व्यक्तिगत तौर पर लगता है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, अनीश गुप्ता गिरिडीह झारखंड से, प्रेरणा शिंदे अमरावती महाराष्ट्र से, और वेदानंद जमशेदपुर झारखंड से। आप सबका बहुत बहुत आभार, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दोस्तों अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।